नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प है।
बिल्कुल, किताब का नाम है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की मेक योर बेड लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड।
हाँ, यानी अपना बिस्तर बनाओ, छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और शायद दुनिया भी।
सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना कि भाई बिस्तर बनाने से दुनिया कैसे बदल सकती है।
सही कहा, पहली बार में तो यही सवाल आता है दिमाग में। लेकिन सोचिए, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए।
हाँ बिल्कुल,
तो ये किताब ना हमें थोड़ा रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली बदलाव वो बड़ी चीजें नहीं, वो छोटी रोजमर्रा की आदतों से ही शुरू होती है।
मतलब बेसिक्स पे ध्यान देना।
और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये किताब असल में दिखाती है कि कैसे अनुशासन, टीम के साथ काम करना, मुश्किलों में टिके रहना,
बिल्कुल
ये चीजें सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में ही नहीं,
बिल्कुल, बल्कि शायद बड़े लेवल पर भी असर डाल सकती हैं।
ये एक्शन की बात करती है, सिर्फ थ्योरी की नहीं। और इस किताब के लेखक एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन कोई आम लेखक नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही बहुत जबरदस्त है।
हाँ बताइए ना उनके बारे में थोड़ा।
वो अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड 4-स्टार एडमिरल हैं। सोचिए, 37 ईयर्स उन्होंने नेवी सील की तरह सेवा दी है। ये दुनिया की सबसे एलीट, सबसे मुश्किल स्पेशल फोर्सेस में से एक मानी जाती है।
ओह, 37 ईयर्स, ये तो बहुत लंबा समय है।
और वो सिर्फ मेंबर नहीं थे, है ना, लीडरशिप रोल्स में थे।
बिल्कुल,
वो यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी सोकॉम के कमांडर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा शायद लोग जानते हैं, 2011 में जो ओसामा बिन लादेन को मारने वाला मिशन था, ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर।
हाँ हाँ याद है, उसका नेतृत्व और प्लानिंग इन्होंने ही की थी। आप सोच सकती हैं किस लेवल का प्रेशर और जिम्मेदारी होगी।
बाप रे, ये अनुभव तो बिल्कुल अलग है।
और यही अनुभव उन्हें इस किताब के लिए मतलब एक खास अथॉरिटी देता है। उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये दशकों के असली हाई स्टेक ऑपरेशंस और दुनिया की शायद सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक BUDS।
BUDS
वो क्या है? बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग। नेवी सील्स की एंट्री के लिए ये बेहद मुश्किल ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने उस मिलिट्री डिसिप्लिन के सबकों को हम जैसे आम लोगों के लिए सरल बनाया है।
ये दिलचस्प है। और वो बाद में शायद अकादमिक दुनिया में भी गए।
हाँ बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सिस्टम के चांसलर भी रहे, तो लीडरशिप और ह्यूमन बिहेवियर पर उनकी समझ काफी गहरी है। और ये किताब असल में उनके एक भाषण से इंस्पायर्ड है जो 2014 में उन्होंने दिया था।
अच्छा,
हाँ, वो भाषण वायरल हो गया था, लाखों लोगों ने देखा, पसंद किया, तो ये आइडियाज कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर रहे थे।
तो चलिए किताब के मूल विचार पर आते हैं। ये कहना क्या चाहती है आखिर?
देखिए, इसका कोर आइडिया बहुत सीधा है कि जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए ना कोई सीक्रेट सॉस या बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती।
अच्छा, तो फिर क्या चाहिए?
ये आती है रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुशासित कामों को लगातार करने से, और जो जरूरी ह्यूमन क्वालिटीज हैं जैसे हिम्मत, टीम वर्क, इनको डेवलप करने से।
मतलब बुनियाद मजबूत करने पर जोर है।
एग्जैक्टली, और इसका आधार है नेवी सील ट्रेनिंग, खासकर वो ब्यूट्स कोर्स, उससे सीखे गए 10 सिद्धांत। वो ट्रेनिंग एक तरह से एक लैब की तरह है जहां इंसान की लिमिट्स को टेस्ट किया जाता है, उसकी हिम्मत, उसकी सहन शक्ति।
तो लेखक ने उन अनुभवों को यूनिवर्सल लेसन्स में बदल दिया।
बिल्कुल, ये किताब बात करती है अनुशासन की, डटे रहने की, टीम वर्क, हिम्मत, विनम्रता, उम्मीद, और इस बात को स्वीकार करने की भी कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती।
हाँ, ये तो है।
और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही छोटे काम से, अपना बिस्तर ठीक करना, और फिर आगे बढ़ता है टीम के साथ नाव चलाने तक, फेलियर से सीखने तक, सर्कस झेलना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने तक, नाइंसाफी का सामना करने तक, और कभी हार ना मानने तक।
तो ये किताब असल में किसके लिए है? क्या सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से ये हर किसी के लिए है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, लीडर्स, कोई भी जो जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रहा है या बस खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है, छोटे कदम बड़े नतीजे।
चलिए, तो फिर इन 10 सिद्धांतों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहला सिद्धांत, जैसा किताब का नाम ही है, अपने दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके करें, मतलब सुबह अपना बिस्तर ठीक करो। ये सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है ना? इसमें क्या बड़ी बात है?
हाँ लगता तो है, लेकिन मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में ये कितनी सीरियस बात थी। सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर एकदम परफेक्ट बनाना पड़ता था। चादर टाइट, कंबल सही से फोल्ड किया हुआ, तकिया बिल्कुल बीच में। इंस्ट्रक्टर आते थे और बहुत बारीकी से चेक करते थे।
और अगर सही नहीं हुआ
तो मिलती थी सजा, शुगर कुकी बनना।
शुगर कुकी? ये क्या होता है? सुनने में तो मीठा लगता है।
हाँ, नाम पर मत जाइए। सोचिए, आपको पूरी वर्दी में समंदर के बर्फीले पानी में डुबकी लगानी है, फिर गीले बदन सीधे रेत पर लौटना है, जब तक आप सिर से पैर तक रेत से सन न जाएं।
ओह।
और फिर पूरा दिन उसी हालत में ट्रेनिंग करनी है। ये सजा थी सिर्फ बिस्तर ठीक ना बनाने की।
बाप रे।
तो ये सिर्फ सफाई या आदत की बात नहीं थी, इसके पीछे का लेसन क्या था? लेसन ये था कि ये छोटा सा काम, बिस्तर बनाना, दिन का पहला टास्क था जिसे आप सक्सेसफुली पूरा करते थे। इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता था, थोड़ा सा गर्व, और ये दिन के बाकी मुश्किल कामों के लिए एक मोमेंटम सेट करता था। ये छोटी चीजों की इंपॉर्टेंस दिखाता है। और जैसा मैक्रेविन कहते हैं, अगर आपका दिन बहुत बुरा भी गुजरा हो, कम से कम रात को जब आप लौटेंगे तो आपको अपना सलीके से बना हुआ बिस्तर मिलेगा। ये एक छोटी सी चीज आपको याद दिलाएगी कि आप कुछ तो सही कर सकते हैं, कि कल फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है।
ये तो काफी गहरा मतलब है एक छोटे से काम का। अच्छा, अगला सिद्धांत क्या है?
दूसरा सिद्धांत है, आप अकेले नहीं जा सकते। यू कांट गो इट अलोन। सीधा सा मतलब, टीम वर्क का महत्व।
अच्छा।
मैक्रेविन यहाँ सील ट्रेनिंग के दौरान एक भारी रबर की नाव, IBS कहते हैं उसे, इन्फ्लेटेबल बोट स्मॉल, उसको चलाने का अनुभव बताते हैं। करीब 140 किलो वजन, 7 लोग मिलकर चलाते थे, वो भी खतरनाक लहरों के बीच।
इसमें तो जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चाहिए होता होगा।
बहुत ज्यादा। लहरों से लड़ने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए हर किसी को एक साथ एक ही रिदम में पेडल मारना पड़ता था। अगर एक भी मेंबर थका या धीमा हुआ
तो नाव भटक सकती है।
बिल्कुल, या फिर बाकी लोगों पर एक्स्ट्रा बोझ आ जाता था। तो सबक क्लियर है, जिंदगी की बड़ी मुश्किलें, चाहे वो असली जंग हो या हमारी रोजमर्रा की स्ट्रगल, अकेले पार नहीं होती, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है।
मतलब हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। मदद मांगना और दूसरों की मदद करना दोनों जरूरी हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपना बोट क्रू ढूंढना होगा, अपना सपोर्ट सिस्टम, वो लोग जिन पर हम भरोसा कर सकें, और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।
ये बात तो बहुत सही है। तीसरा सिद्धांत क्या है?
तीसरा है, केवल आपके दिल का आकार मायने रखता है। ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। मतलब आपकी फिजिकल बनावट, हाइट, वेट, इससे ज्यादा जरूरी है आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपकी अंदरूनी ताकत।
अच्छा, इसका कोई उदाहरण?
हाँ, मैक्रोवन अपने ट्रेनिंग की एक टीम का जिक्र करते हैं जिसे वो मजाक में मंचकिन क्रू कहते थे। मंचकिन वो बोनो वाली कहानी से, क्योंकि उस टीम के सारे मेंबर छोटे कद के थे, करीब 5.5 फुट के आसपास।
और जाहिर है बाकी लंबी टीमों वाले मजाक उड़ाते होंगे।
हाँ, अक्सर। लेकिन वही मंचकिन क्रू अपने कमाल के टीम वर्क और जबरदस्त इरादे से कई बार उन लंबी एथलेटिक टीमों से बेहतर परफॉर्म कर जाती थी। वो एक स्विमिंग टेस्ट का किस्सा भी बताते हैं जहां एक छोटे कद के ट्रेनी ने सबको चौंकाते हुए एक बहुत लंबे, फिजिकली इंप्रेसिव दिखने वाले ट्रेनी को हरा दिया था।
वाओ।
तो लेसन ये है कि लोगों को उनकी बाहरी अपीयरेंस से जज मत करो, उनके अंदर की आग, उनकी हिम्मत, उनके कैरेक्टर को देखो, और खुद को भी कभी कम मत समझो, दिल बड़ा होना चाहिए।
ये बहुत इंस्पायरिंग है। चौथा सिद्धांत थोड़ा कड़वा है शायद, जीवन उचित नहीं है, आगे बढ़ें।
हाँ, ये जिंदगी की एक रियलिटी को फेस करने की बात करता है।
हम्म।
कि लाइफ में नाइंसाफियां होगी, बुरा वक्त आएगा, या फिर से वो शुगर कुकी वाली सजा याद आती है।
अच्छा, वो नाइंसाफी कैसी थी? मतलब गलती की सजा तो ठीक है।
कई बार वो सजा बिना किसी खास गलती के मिल जाती थी, या बस इंस्ट्रक्टर का मूड खराब था तो किसी को भी भेज दिया। कोई लॉजिक नहीं लगता था, बहुत अनफेयर फील होता था। और हैरानी की बात यह है कि कई बहुत केपेबल ट्रेनी इसी अनफेयरनेस को झेल नहीं पाए और ट्रेनिंग छोड़कर चले गए।
तो सबक ये है कि दुनिया हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। कंप्लेन करने से फायदा नहीं है।
बिल्कुल, जिंदगी में ऐसा होगा, आपके साथ गलत होगा, बिना आपकी गलती के मुश्किल आएगी। अब आप या तो बैठकर रोते रहो, शिकायत करते रहो, जिससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, या फिर मैक्रोवन कहते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, देखो अगर उससे कुछ सीख सकते हो, और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। ड्राइव ऑन मतलब चलते रहो, रुकना नहीं है।
ये सीखना बहुत मुश्किल है, पर शायद बहुत जरूरी भी। अगला पांचवा सिद्धांत क्या है?
पांचवा है, असफलता आपको मजबूत बना सकती है। फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। ये फेलियर को देखने का नजरिया बदलने की बात है। मैक्रेवन यहाँ द सर्कस का उदाहरण देते हैं।
द सर्कस? ये क्या था? कोई फन एक्टिविटी?
फन तो बिल्कुल नहीं, ये भी एक तरह की सजा थी। अगर आप दिन के किसी फिजिकल टास्क में जैसे रनिंग या स्विमिंग में स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते तो शाम को आपको 2 घंटे की एक्स्ट्रा बहुत ही कठिन कसरत करनी पड़ती थी, उसे ही द सर्कस कहते थे।
ये तो और डिमोटिवेटिंग लगता है, फेल हुए और ऊपर से और सजा।
हाँ लगता तो है, पर मैक्रेवन ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, जो ट्रेनीज बार बार सर्कस में जाते थे, मतलब बार बार फेल होते थे पर टिके रहते थे, वो असल में फिजिकल और मेंटल रूप से और भी ज्यादा टफ बन जाते थे।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को जान जाते थे और उन्हें इम्प्रूव करने पर काम करते थे, वो फेलियर से डरना छोड़ देते थे। तो सबक ये है कि फेलियर से डरो मत, वो एक मौका है सीखने का, खुद को जानने का और पहले से बेहतर बनने का। गिरकर उठने वाला ही असल में मजबूत होता है।
ये तो बिल्कुल सही बात है। छठा सिद्धांत थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड लगता है, आपको बड़ा साहस दिखाना होगा, यू मस्ट डेयर ग्रेटली, मतलब कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी, रिस्क लेने होंगे।
हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क। मैक्रेवन एक ऑब्स्टिकल कोर्स का जिक्र करते हैं जिसमें एक ड्रिल थी, स्लाइड फॉर लाइफ। एक 30 फुट ऊंचे टॉवर से 200 फुट दूर दूसरे टॉवर तक एक रस्सी के सहारे फिसल कर जाना था।
ओके।
ज्यादातर लोग सेफ तरीका अपनाते थे, रस्सी को हाथों और पैरों से कसकर पकड़कर धीरे धीरे जाते थे।
लेकिन किसी ने कुछ हटकर किया होगा।
बिल्कुल, एक ट्रेनी था जिसे रिकॉर्ड तोड़ना था। उसने एक बहुत डेयरिंग तरीका अपनाया, सिर के बल नीचे सिर्फ हाथों से रस्सी पकड़कर तेजी से फिसलना। इसमें गिरने का खतरा बहुत ज्यादा था।
ओह।
पर उसने वो रिस्क लिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेसन ये है कि हमेशा सेफ खेलने से ऑर्डिनरी रिजल्ट ही मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पाने के लिए कभी कभी आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, सोच समझ कर।
सोच समझ कर, ये जरूरी है। सातवां सिद्धांत है शार्क का सामना करें, स्टैंड अप टू द शार्क्स। ये किसके बारे में है? असली शार्क मछलियां।
कहानी तो असली शार्क से ही जुड़ी है, पर सबक जिंदगी के शार्क्स के बारे में है, मतलब वो लोग, वो सिचुएशन जो हमें डराती हैं, बुली करती हैं या हमारे साथ अन्याय करती हैं।
अच्छा, क्या किस्सा है?
सील ट्रेनिंग में एक रात उन्हें सैन क्लेमेंटे आइलैंड के पास पानी में तैरना था और वो एरिया शार्क्स के लिए जाना जाता था। इंस्ट्रक्टर जानबूझकर शार्क के किस्से सुनाकर माहौल बनाते थे, डराते थे।
तो ट्रेनीज को क्या करने को कहा गया? भागने को?
नहीं, बिल्कुल उल्टा। उन्होंने सिखाया कि अगर तैरते हुए कोई शार्क आपके पास आकर चक्कर काटने लगे तो घबरा कर भागना नहीं है, रुकना है, अपनी जगह पर खड़े रहना है, हिम्मत दिखानी है और अगर वो बहुत करीब आए तो उसकी नाक पर जोर से मुक्का मारना है।
क्या बात है, मुक्का मारना है।
हाँ, उनका कहना था कि शार्क असल में डरपोक होती है और जब उसे सामना मिलता है तो वो पीछे हट जाती है। तो सबक ये है कि जिंदगी में जो बुलीज होते हैं, जो हमें डराने वाले लोग या हालात होते हैं, वो हमारे डर से ही ताकत पाते हैं।
सही।
अगर हम डरकर भागेंगे तो वो और हावी होंगे, लेकिन अगर हम हिम्मत जुटाकर उनका सामना करें तो अक्सर वो पीछे हट जाते हैं। हमें इन शार्कों का सामना करना सीखना होगा।
ये बहुत जरूरी सबक है। आठवां सिद्धांत हमें सबसे मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार करता है। सबसे बुरे क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स।
हाँ, ये कहता है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों, जब प्रेशर पीक पर हो, तभी हमें अपने अंदर की सारी काबिलियत, सारी हिम्मत दिखानी होती है। मैक्रेवन पानी के नीचे शिप पर अटैक करने की एक ट्रेनी ड्रिल का जिक्र करते हैं।
ये कैसे होती थी?
ट्रेनीज को रात के अंधेरे में बिना किसी लाइट के पानी के अंदर तैरकर दुश्मन के जहाज के सबसे निचले हिस्से कील तक पहुंचना होता था और वहां एक नकली बम लगाना होता था।
ये तो सोचकर ही डर लग रहा है, पूरा अंधेरा पानी के नीचे।
बिल्कुल, क्लॉस्ट्रोफोबिक, डिसओरिएंटिंग और बेहद तनाव वाला। जरा सी गलती और आप खो सकते थे या पकड़े जा सकते थे। ऐसे मोमेंट में एकदम शांत रहना, फोकस बनाए रखना और अपना काम परफेक्टली करना, यही असली टेस्ट था। तो सबक यह है कि जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं, कोई बड़ा पर्सनल लॉस, कोई बड़ा प्रोफेशनल क्राइसिस, जब सब कुछ अंधेरा लगता है, उन्हीं डार्केस्ट मोमेंट्स में हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना होता है और अपना बेस्ट देना होता है। गिव अप करना ऑप्शन नहीं है।
ये बहुत पावरफुल है। नौवां सिद्धांत मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब आप गर्दन तक कीचड़ में हो तो गाना शुरू करें, स्टार्ट सिंगिंग व्हेन यू आर अप टू योर नेक इन मड। इसका क्या मतलब है?
ये उम्मीद की ताकत के बारे में है, होप की। किस्सा है हेल वीक का, जो सील ट्रेनिंग का सबसे भयानक हफ्ता माना जाता है। लगातार कई दिन बिना सोए या बहुत कम सोए, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
तो एक रात इंस्ट्रक्टर्स ने ट्रेनीज को कमर तक ठंडे चिपचिपे कीचड़ में घंटों खड़े रहने की सजा दी। रात थी, ठंड बढ़ रही थी, सब बुरी तरह थके हुए थे। कई लोग हिम्मत हार रहे थे, ट्रेनिंग छोड़ने का सोच रहे थे। माहौल बहुत भारी था।
ऐसे में तो नेगेटिविटी हावी हो जाती होगी।
बिल्कुल। तभी अचानक एक ट्रेनी ने धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। पहले तो सबको अजीब लगा, इंस्ट्रक्टर भी चिल्लाए, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके बाकी ट्रेनी भी उसके सुर में सुर मिलाने लगे, और देखते ही देखते उस गाने ने पूरा माहौल बदल दिया।
कैसे?
उस गाने भी उन्हें यूनाइट कर दिया। ठंड और थकान का एहसास थोड़ा कम हो गया, और सबसे जरूरी बात, उनमें उम्मीद जगा दी। इंस्ट्रक्टर्स की जो साइकोलॉजिकल पकड़ थी वो ढीली पड़ गई।
वाओ।
तो सबक ये है कि निराशा के सबसे गहरे पलों में भी एक अकेला इंसान उम्मीद की चिंगारी जला सकता है, और वो उम्मीद पूरे ग्रुप को ताकत दे सकती है। जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर लगें, तो गाना गाने का कोई तरीका ढूंढो। मतलब पॉजिटिव रहो, दूसरों को इंस्पायर करो, उम्मीद जगाओ।
ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। और अब आखिरी 10वां सिद्धांत।
10वां सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है, पर शायद सबसे मुश्किल। कभी कभी भी हार न माने। डोंट एवर एवर रिंग द बेल।
बर्ड्स ट्रेनिंग एरिया के बीचों बीच एक पीतल की घंटी टंगी रहती थी।
और उसका क्या सिग्निफिकेंस था?
वो हार मानने का सिंबल था। कोई भी ट्रेनी किसी भी वक्त, दिन हो या रात, अगर उसे लगता कि बस अब और नहीं सहा जाता, तो वो जाके उस घंटी को 3 बार बजा सकता था। इसका मतलब था मैं क्विट कर रहा हूँ। उसे तुरंत ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता था।
तो सिद्धांत बस इतना है कि वो घंटी कभी नहीं बजानी है।
बिल्कुल। मैक्रीवन कहते हैं कि वो घंटी बजाना यानी हार मान लेना एक ऐसा डिसीजन है जिसका रिग्रेट शायद पूरी जिंदगी रहता है। जिंदगी आपको बार बार तोड़ेगी, मुश्किलें आपको लुभाएंगी कि बस अब छोड़ दो, घंटी बजा दो। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो हार मानने से इनकार कर देते हैं। वो दर्द सहते हैं, थकान झेलते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। सबक एकदम क्लियर है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप। वो घंटी कभी मत बजाओ।
वाह, ये 10 सिद्धांत वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो कुछ मेन थीम्स या संदेश उभर कर आते हैं, है ना? मेरे लिए शायद सबसे पहली बात है छोटी छोटी अनुशासित आदतों की ताकत। वो बिस्तर बनाने वाली बात ये दिखाती है कि रोज की छोटी चीजों को सही से करना कितना जरूरी है। ये धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती हैं।
और दूसरा है मुश्किलों में लचीलापन यानी रेजिलियंस। लाइफ आसान नहीं है, फेयर भी नहीं है हमेशा, जैसे वो शुगर कुकी या सर्कस वाली बातें। तो शिकायत करने के बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उससे सीख कर और मजबूत बनना, ये हमारे यहाँ भारत में तो रोजमर्रा की जरूरत है जहाँ इतनी अनिश्चितता है।
बिल्कुल सही। तीसरा, टीम वर्क और ह्यूमन कनेक्शन का महत्व। वो बोट क्रू वाली बात, अकेले कोई नहीं जीत सकता। हमें दूसरों के सहारे की जरूरत है और हमें भी दूसरों का सहारा बनना चाहिए। ये ऑफिस हो या घर, हर जगह सच है।
और चौथा, डर के बावजूद हिम्मत दिखाना। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, डर के होते हुए भी एक्शन लेना है, चाहे वो शार्क का सामना करना हो या लाइफ में कोई मुश्किल फैसला लेना हो।
पांचवा, उम्मीद की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। वो कीचड़ में गाना गाने वाली कहानी कितनी पावरफुल थी। सबसे अंधेरे वक्त में भी एक छोटी सी उम्मीद रोशनी ला सकती है, और हम में से कोई भी वो उम्मीद जगाने वाला बन सकता है।
और छठा, जो शायद इन सबका सार है, कभी हार न मानने का जज्बा। वो घंटी न बजाने वाली बात। सक्सेस अक्सर उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और कोशिश करना नहीं छोड़ते। पर्सिस्टेंस इसकी।
इस किताब में वाकई कई ऐसी बातें हैं जो याद रह जाती हैं। कुछ कोट्स या आइडियाज जो आपको खास तौर पर अच्छे लगे?
हाँ, एक तो वही जो टाइटल भी है और कोर मैसेज भी। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपने बिस्तर बनाने से शुरुआत करें। मतलब बड़े बदलाव की शुरुआत खुद से, अपनी छोटी जिम्मेदारियों से होती है।
और मुझे ये वाली लाइन बहुत सच्ची लगी, कभी कभी चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप फिर भी शुगर कुकी बन जाते हैं। जीवन कभी कभी ऐसा ही होता है। ये बिना कड़वाहट के लाइफ की अनफेयरनेस को एक्सेप्ट करना सिखाती है।
बिल्कुल। और ये जो एक्शन के लिए प्रेरित करती है, बड़ा साहस दिखाए बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके जीवन में वास्तव में क्या संभव है। ये अपनी लिमिट्स पुश करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करती है।
और ये उम्मीद वाली बात आशा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। एक व्यक्ति लोगों को आशा देकर दुनिया बदल सकता है। ये होप को एक एक्टिव फोर्स की तरह देखती है।
और आखिर में वो सीधा नो नॉनसेंस मैसेज, कभी कभी भी घंटी मत बजाना, हार न मानने का अल्टीमेट रिमाइंडर।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नेवी सील की ट्रेनिंग के ये सिद्धांत हम अपनी नॉर्मल सिविलियन लाइफ में वाकई लागू कर सकते हैं? मतलब हमारी लाइफ तो उतनी एक्सट्रीम नहीं होती।
मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट एक्सट्रीम सिचुएशन का नहीं, उसके पीछे के प्रिंसिपल का है। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में हम दिन की शुरुआत किसी छोटे डिसिप्लिन वाले काम से कर सकते हैं। बिस्तर बनाना, 5 मिनट ध्यान या बस एक ग्लास पानी पीना, ये एक पॉजिटिव टोन सेट करता है।
और जब फेल हो तो उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड ना मानकर सर्कस की तरह देखें, सीखने का मौका। जब लगे नाइंसाफी हुई है तो शुगर कुकी की तरह उसमें फंसे रहने के बजाय एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का सोचें।
बिल्कुल, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी टीम के साथ बोट क्रू की तरह काम करें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगें, दूसरों की मदद करें। जब ऑफिस में टफ टाइम हो, प्रेशर हो, तो कोशिश करें कि आप शांत रहें और टीम को इंस्पायर करें, जैसे अंधेरे पलों में बेस्ट देना या कीचड़ में गाना।
हाँ, और अगर ऑफिस में कोई शार्क यानी बुली या अनफेयर बॉस दिखे तो डरने के बजाय हिम्मत से सिचुएशन को हैंडल करें। अपने गोल्स सेट करते समय थोड़ा बड़ा सोचने और उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने से न डरें। स्लाइड फॉर लाइफ, और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगे रहें, हार न माने, घंटी न बजाए।
और अपने माइंडसेट पर काम करें, अपनी अंदरूनी ताकत पर फोकस करें, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे पर, दिल का आकार। मुश्किलों में भी होपफुल रहें और दूसरों में भी पॉजिटिविटी फैलाएं।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने का रास्ता छोटे छोटे कंसिस्टेंट कामों से ही बनता है। हमारा असली कैरेक्टर रोजमर्रा की छोटी चुनौतियों और चॉइसेस में ही निखरता है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये था कि कैसे एक बहुत ही खास, बहुत ही मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग के लेसन्स इतने यूनिवर्सल हैं। टीमवर्क, होप, रेजिलियंस, नेवर गिव अप, ये चीज़ें किसी भी इंसान के लिए किसी भी फील्ड में उतनी ही ज़रूरी हैं। मैसेज बहुत सिंपल है पर गहरा है।
सच कहा, और ये आइडिया कि दुनिया बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से, और वो भी बिस्तर बनाने जैसे छोटे काम से हो सकती है, ये वाकई बहुत एम्पावरिंग है। ये हमें याद दिलाता है कि पावर हमारे अंदर ही है, बस शुरुआत करनी है।
हाँ, पर एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये सिद्धांत हर कल्चर में हर व्यक्ति के लिए उतने ही एप्लीकेबल है, या ये खास किस्म की, शायद थोड़ी वेस्टर्न, थोड़ी मिलिट्रिस्टिक सोच को दर्शाते हैं? इस पर भी सोचना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।